नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी ओम शांति। आज एक बार फिर हम ध्यान की तरफ ले चलते हैं, लेकिन ध्यान से पहले बहुत जरूरी है कि मन की अवस्था की बात करें, क्योंकि मन जैसा कि हमने देखा है कि चंचल है, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए कहते हैं कि बुद्धि को कंट्रोल में कीजिए। उषा बहन ने हमें बताया था, तो बुद्धि यानी विजुलाइज जो करती है उसको अगर हम कंट्रोल करते हैं तो मन भी कंट्रोल में आ सकता है। लेकिन कई बार हमने देखा है कि मन जो है वो स्वस्थ नहीं रहता, मन कभी भी उदास हो जाता है, कोई सिचुएशन आ जाती है या पुरानी किसी बात को याद करके, और हम कितनी भी कोशिश कर लें उसकी उस उदासी को या परेशानी को दूर नहीं कर पाते। तो आइए आज ये कोशिश करते हैं जानने की कि मन स्वस्थ कैसे रह सकता है, और इसे बातचीत करने के लिए हमारा सौभाग्य हमें साथ प्राप्त हुआ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर उषा का, तो उनसे बात करते हैं। उषा बहन आपका बहुत बहुत स्वागत जयंती। बहुत कुछ हमने आपसे जाना है और बहुत से हमारे दर्शक जो है उनकी बहुत सी जो वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही थी जब हम ध्यान में जाके या ज्ञान को समझते हुए उसे इम्प्लीमेंट करने की जो बात थी, आज हम एक बार फिर मन की तरफ चलते हैं, मन के तल पर आपको ले चलते हैं। और मन जो देखते हैं तो चंचल तो है, लेकिन कभी कभी इतना डिप्रेस्ड हो जाता है, इतना कमजोर हो जाता है कि हम चाहकर भी उसको उठा नहीं पाते। फिर वी आर नॉट एबल टू पुल इट आउट। और ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा हो ऐसा नहीं है, हम में से अधिकतर शायद ये जो आज जिस युग में हम रह रहे हैं उसका प्रभाव है। कई बार तो मैं अपने आप को भी ये कहती हूँ कि शायद ये कलयुग का ही प्रभाव है कि मन जो है वो इतना थक जाता है, इतना उदास हो जाता है कि ना चाहते हुए भी वो धरातल सरातल पे चला जाता है।
उसमें ऐसा है कि उसके लिए मन को स्वस्थ रखने की बात है कि जैसे आज दुनिया के अंदर ये जागृति है, हेल्थ कॉन्शियस लोग बन गए हैं, भाई हमारा हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, माना हमारा पूरा बॉडी अच्छा रहना चाहिए, कहीं तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और उसके लिए आज दुनिया के अंदर हेल्थ रिलेटेड कितने प्रोग्राम्स आ गए हैं कि तन को स्वस्थ रखो। कई लोग डाइट को लेकर के चलते हैं, तो कई लोग एक्सरसाइज को लेकर चलते हैं, कई प्राणायाम को लेकर के चलते हैं, लेकिन हर बात में अगर देखा जाए तो तीन चीजें अवश्य है तन को स्वस्थ रखने के लिए। सबसे पहली बात है कि तन को स्वस्थ रखने के लिए वी नीड टू हैव प्रॉपर नरिशमेंट, अच्छा ठीक से भोजन देना आवश्यक है ना। आज किसी को थोड़ा सा वेदर चेंज होता है कि सर्दी जुखाम बुखार भी आ जाता है, वो डॉक्टर के पास जाता है कि डॉक्टर हमारे घर में 5 मेंबर्स हैं, किसी को भी ये सर्दी जुखाम बुखार नहीं हुआ, मुझे क्यों हुआ। सिंपल बात है कि डॉक्टर कहेगा कि भाई आपके फिजिकल इम्यूनिटी लो है,
रेजिस्टेंस पावर
कम है, इसीलिए बाहर के वायरस ने अटैक किया एंड यू आर प्रोन टू दैट वायरल फीवर, सिंपल एज दैट। उसके लिए वो दो चीज देता है, एक एंटीबायोटिक जो वायरल को खत्म करे, और दूसरा ज्यादा कमजोरी ना आए उसके लिए एक मल्टीविटामिन या बिकोसल दे देगा, है ना। और फिर साथ में सलाह देता है कि भाई आप अपने आप को स्वस्थ रखो, यानी फिजिकल इम्यूनिटी को बढ़ाओ, फिजिकल रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाओ। और उसको बढ़ाने के लिए तीन चीज कहता है, प्रॉपर नरिशमेंट हो, है ना,
डाइट बिल्कुल ठीक है,
डाइट ठीक हो जिसके अंदर प्रॉपर मिनरल्स हो, प्रॉपर फूड वैल्यूज हो, ये चीज खाओ आप। दूसरा कहता है रेस्ट लो, भाई 6 घंटा कम से कम आराम जरूरी है शरीर को भी। आप व्यक्ति काम करता ही जाए ध्यान ही न दे सोने पर, तो नेचुरल है उसकी इम्यूनिटी तो लो होनी ही है। और तीसरा है एक्सरसाइज, तीन चीज करो तो शरीर स्वस्थ रहता है। ठीक इसी प्रकार जैसे वहां चेंज ऑफ वेदर इफेक्ट करती है फिजिकल रेजिस्टेंस पावर जिसको कम होता है इसी तरह, तो इसी तरह जिसकी मेंटल रेजिस्टेंस पावर कम है तो थोड़ा सा सिचुएशन में चेंज आया, नॉर्मल रूटीन से थोड़ा सा चेंज आया कि वी ऑल्सो स्टार्ट रिएक्टिंग, वहां बॉडी रिएक्ट कर रही है तो चेंज ऑफ वेदर, यहां हमारा माइंड मूड रिएक्ट करने लगता है, माइंड इरिटेट होता है, टेंशन में आ जाता है, अरे ऐसा क्यों हो गया, ये तो लाइफ है, है ना। लेकिन उस बात को व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि नहीं मेरे साथ ऐसा होना ही नहीं चाहिए, ये चेंजेस क्यों, और इतना मूड अपसेट
हो जाता है, तरह से नहीं रह सकते जिंदगी, क्यों सही नहीं चल सकते जिंदगी, कितनी बार हम में से हर कोई बोलता है ये बात।
और इसलिए मूड इतना अपसेट और इतना स्विंग करता है मूड, ये बताता है कि हमारी मेंटल रेजिस्टेंस पावर कितनी कम है,
थोड़ा सा चेंज
एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। अब वहां तो फिजिकल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए विटामिन है, टॉनिक है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ कोई टॉनिक तो चलना नहीं है जो हमारी मेंटल इम्यूनिटी को बढ़ाए, मेंटल रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाए, क्योंकि मन तो सूक्ष्म चीज है ना। लेकिन जैसे तन को स्वस्थ रखने के लिए तीन चीज जरूरी है, ऐसे मन को स्वस्थ रखने के लिए भी तीन चीज जरूरी है, प्रॉपर नरिशमेंट, रेस्ट और एक्सरसाइज। अब मन का नरिशमेंट क्या है? मन का नरिशमेंट है अच्छा चिंतन, अच्छे विचार। जब जहां कहीं से भी उसको अच्छे विचार मिलते हैं तो हम सुनने लग जाते हैं, एकदम ध्यान से सुनते हैं, है ना। और यही अगर फालतू बातें करे, कोई पॉलिटिक्स की बातें करे, इधर उधर की बातें करे, या किसी की परचिंतन की बातें करे, निंदा करे, ग्लानी करे, चुगली करे, तो कहेंगे अरे क्या ये बातें लेकर के बैठे हैं, है ना। तो ये बताता है कि हेल्दी चिंतन किसको कहा जाता है। तो हेल्दी चिंतन माना कि जहां अच्छे विचार मिलते हो,
सत्संग की बात हो जाती है,
सत्संग की बात हो, है ना। सत्संग की बातें जहां चलती है, व्यक्ति के अंदर विचारों में परिवर्तन आता है। मुझे कहानी इस पर याद आती है, है ना, कहानी तो हर एक को अच्छी लगती है, कि एक बार एक चोर था, तो वो जिस गांव में रहता था, तो उस गांव में एक महात्मा जी पधारे, सत्संग चल रहा था, सारा गांव, महात्मा जी बहुत फेमस थे, तो सारा गांव उसका सत्संग सुनने के लिए गए। तीन दिन सत्संग चलने वाला था, वो चोर ने सोचा ये अच्छा मौका है, सारा गांव वहां इकट्ठा, भी डेढ़ घंटा तक तो कोई हिलने वाला है नहीं, आज अच्छा मौका है चोरी करने का। उसने एक सेठ का घर ढूंढा कि आज ये सेठ के घर से चोरी करना है, और चोरी में सफल भी हो गया। चोरी करके जब आ रहा था, और आ करके सारा माल जो है उसने एक कमरे के अंदर रखा, सब उसको अच्छी तरह से ढक करके रखा, और बाहर आराम कुर्सी लेकर के बैठा। थोड़ी देर में देखता है कि जो है कुछ लोग उसके सामने आए, देवदूत का वेश पहन करके, और कहा कि आज जो तूने चोरी किया है भगवान ने देखी है, और उसके लिए तुझे बहुत कड़ी सजा मिलने वाली है, लेकिन फिर भी भगवान तुझे सुधरने का मौका दे रहा है, इसलिए जो तुमने चोरी की है अगर तुम समर्पित कर दो तो भगवान तुम्हें क्षमा कर देगा। अब ये चोर घबरा गया, कहा सचमुच अगर भगवान ये देवदूत के वेश में अगर आए हो और मुझे वही देख सकता है, बाकी तो सारा गांव तो अंदर बैठा हुआ था वहां सत्संग में, तो किसी ने देखा नहीं। वो सोच में पड़ गया, समर्पित कर देता हूं, जाने दो। लेकिन हुआ क्या कि जब वो वहां से गुजर रहा था, सत्संग जहां चल रहा था वहां देखने के लिए वो सेठ बैठा है, उसके परिवार वाले बैठे हैं, वहां से जब गुजर रहा था तो उसी समय महात्मा जी के महावाक्य उसने सुने। तो क्या सुना? तो उस समय महात्मा जी बता रहे थे कि देवदूत जो होते हैं उनकी परछाई कभी नहीं होती है। एक ही लाइन उसने सुनी, वो चला गया। उसके तो कोई काम की नहीं थी कि देवदूतों की परछाई है या नहीं है, हमारा का क्या मतलब आया। लेकिन जब ये देवदूत बनकर के व्यक्ति आया कि तुम आज सारा धन जो तुमने चोरी किया है समर्पित कर दो, तो वो अंदर गया कमरे में लेने के लिए, और जैसे ही वो कमरे की लाइट स्विच ऑन किया और खिड़की से उसने देखा कि उस लाइट के रिफ्लेक्शन में वो व्यक्ति की परछाई पड़ी, तो कहा आज मैंने सुना उस सत्संग में, अभी तो मैंने सुना कि देवदूतों की परछाई नहीं होती है, ये व्यक्ति की तो इतनी बड़ी परछाई है, इसका मतलब ये
देवदूत नहीं है,
है ना। तो वो अंदर से बड़ा डंडा लेके आया कि तू देवदूत है ही नहीं, तू बता दे तू कौन है, नहीं तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो कहा कैसे तुझे पता चला कि मैं देवदूत नहीं हूं? तो कहा मैंने सत्संग में सुना कि देवदूतों की परछाई नहीं होती, तेरी में तो इतनी बड़ी परछाई पड़ रही है, इसका मतलब तू देवदूत है नहीं, तो तू कौन है? तो वो व्यक्ति इतना डरा, कहता मैं भी तेरे जैसा चोर हूं, चोरी करने गया था, जब तेरे को देखा तो मैंने सोचा तैयार माल ले लूं, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी, इसीलिए मैं यहाँ ये वेश पहन करके आया कि मैं तेरे को डरा दूंगा और ले लूंगा। लेकिन अभी तेरे को जब पता चल ही गया है तो मुझे नहीं चाहिए, तू रखो अपने पास, मैं जाता हूँ, मेरी जान बख्श दे। तो वो चला गया। ये बात उस चोर की वाइफ सुन रही थी, सारा डायलॉग। वो बड़ी धार्मिक विचार की थी। वो अपने पति को कहती है, आज एक महावाक्य सुना तुमने सत्संग में, और एक महावाक्य सुनने से तुम ये धन जो चोरी करके लाया उसको बचा सका। अगर इस प्रकार तुम रोज सत्संग सुनो, पता नहीं जीवन के कितने अमूल्य खजाने हैं जिसको तुम डेवलप कर सकते हैं, कितना तुम उसको विकसित कर सकते हैं, कितना अपने जीवन में उससे फ्लरिश हो सकते हैं। तो इसीलिए ये धन तो क्या है, लेकिन ये जीवन के अंदर जो अमूल्य धन है उसकी भी तो कभी चिंता करो। ये बात उस व्यक्ति को ऐसे लग गई और वहां से उसके अंदर चेंज आया। भावार्थ ये है कि सत्संग में भले हमें कुछ समझ में नहीं भी आता हो, लेकिन कभी कभी एक वाक्य भी जीवन में इस तरह उपयोगी हो जाता है जो जीवन में एक मोड़ दे देता है, जीवन के अंदर एक आशा की किरण जागृत कर देता है। वो चीज किस समय फ्लैश होकर के हमें याद आने वाली है, पता ही नहीं।
बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने बात की, और ये हम में से हर एक ने एक्सपीरियंस की है। ओनली थिंग इज वी शुड बी रेडी टू कैच इट। हम कई बार तैयार ही नहीं होते, जब मन पूरी तरह से टूटा हुआ होता है ऐसे में हम तैयार ही नहीं होते उसे कैच करने के लिए। बहुत सुंदर आपने बात कही कि आज अगर हम सत्संग को देखते हैं, जो मन को नरिश करने की जो बात है, कि उसमें सत्संग जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है।
तो वही एक सोर्स है जहां से अच्छे विचार हमें मिलेंगे, और वो विचार अगर हम उसको फ्लरिश करें, अपने मन के अंदर उसको अगर उगाएं, उसको डेवलप करें, तो आप देखेंगे कि जो मूड स्विंग्स है वो मूड स्विंग्स हमारे समाप्त हो जाते हैं, और मूड सदा प्रसन्न प्रफुल्लित रहने लगता है। जीवन के अंदर कई प्रकार अच्छे अच्छे विचार आता है ना, तो इतनी खुशियां।
एक्चुअली अगर हम देखें कि डिप्रेशन भी हमें क्यों होता है, अब क्योंकि देखा जा सकता है, साक्षी भाव से अगर आप कर पाते हैं तो उसको एनालाइज कर पाते हैं कि हम जो चाह रहे होते हैं वो नहीं हो रहा होता है तो हम डिप्रेस हो रहे होते हैं, या एंगर आ रहा होता है या डिप्रेशन होता है। जो मन का जो मूड स्विंग की बात अगर हम देखते हैं, समवेयर हर एक के साथ यही होता है कि जो डिप्रेशन में जाने का कारण यही है कि मुझे कुछ चाहिए सिचुएशन से या व्यक्ति से, वो मुझे नहीं मिल पा रहा है, मैं कर कुछ भी नहीं पा रहा, तो मैं डिप्रेस हो जाता हूं
नेचुरली। इसलिए यही एक सोर्स है जहां से हर रोज हमें नए नए विचार मिलेंगे, लेकिन उसके लिए रोज अपने मन को अच्छा खुराक देने की जरूरत है। वी नीड टू रेगुलरली नरिश आवर माइंड्स विद हेल्दी थॉट्स। जितना हम हर रोज उसको अच्छे विचार देंगे, उतना आप देखेंगे कि कितना आनंद में रहने लगता है, उमंग उत्साह में रहने लगता है, जैसे जीवन के लिए जीने के लिए एक चाबी मिल गई जो कई प्रकार की मिस्ट्रीज को सॉल्व कर देता है।
बिल्कुल, वंडरफुल।
कई प्रकार की उलझनों को सॉल्व करता जाता है, और जैसे लगता है कि पता नहीं ये बात पहले मुझे क्यों नहीं मालूम थी। कितनी सिंपल बात है।
हाँ, मैं क्यों नहीं समझ पाया।
हाँ,
पहले
क्यों नहीं समझ पाया
यहाँ पे। लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहती हूँ आपसे कि जो वांटिंग है, जो ये वांटिंग है, चाहे वो स्थूल की नहीं हो। बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे ऐश्वर्या नहीं चाहिए, मुझे गाड़ियां नहीं चाहिए, मुझे फेम नहीं चाहिए, लेकिन मुझे प्यार चाहिए, मुझे हैप्पीनेस चाहिए। ये जो वांटिंग है कि समवेयर नहीं है, वो जब डिप्रेशन देती है, वो वांटिंग को कन्वर्जन कैसे करें, उसका मूड स्विंग्स में कैसे,
उसका मूड स्विंग्स जो होता है उसके, उसको लेकर के उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। क्योंकि जब हमें अच्छी अच्छी बातें मिलने लगी है, अच्छा खुराक मिलने लगा, तो एक सेटिस्फेक्शन आ जाता है, फुलफिलमेंट आने लगती है, और वो फुलफिलमेंट जैसे जैसे भरती जाती है उतना वो मूड स्विंग्स हमारे ठीक होने लगते हैं। वांटिंग्स है वो जैसे अंदर से ही मुझे प्राप्त हो रही है, अंदर से मुझे खुशी मिल रही है, अंदर से मुझे सुख मिल रहा है, अंदर से मेरा माइंड रिलैक्स होने लगा है। तो ये जो अंदर से मिलने लगी है, इसलिए मुझे शास्त्र की एक और बात याद आती है कि कहा जाता है कि जब कलयुग आने वाला था तो भगवान ने कहा कि भाई ये सुख और शांति इसको कहाँ छुपा दे, क्योंकि कलयुग के अंदर व्यक्ति को सुखी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो अगर कलयुग में भी सुखी रहेगा तो सत्युग की वैल्यू नहीं रहेगी। तो कहा कि कहाँ रखे उसको, कहाँ छुपाए सुख शांति को, कहाँ छुपाए? तो कहा किसी देवताओं ने कहा आसमान में छुपा दो, तो कहा नहीं कलयुगी मनुष्य जो है ना आसमान को भी एक्सप्लोर कर देगा। कहा समुद्र की गहराई में छुपा दो, कहा वो समुद्र के तले तक चला जाएगा, इतनी उसके पास क्षमता है कि बाह्य दुनिया को खोज करने में कुछ भी बाकी नहीं छोड़ेगा। तो कहा फिर कहाँ रखे, कौन सी ऐसी जगह है सेफेस्ट प्लेस कि जहां वो कम से कम जाएगा या जहां से वो प्राप्त कम से कम कर सके? तो कहा उसी के अंदर रख दो,
क्योंकि वो अंदर जाएगा ही,
वो अंदर जाएगा ही नहीं, बाहर की दुनिया की खोज में इतना लगा रहेगा जो अंदर जाने की फुर्सत ही नहीं होगी उसके पास। और जो अंदर चला गया वो अंदर से उसको जब प्राप्त कर लेता है तो इनर सेटिस्फेक्शन, एक कंटेंटमेंट ऐसी चीज है कि वो जो बाहर की है वो खत्म हो जाती है।
बिल्कुल, डेफिनेटली आई थिंक दैट रियली मस्ट हैव हैपेंड, ये जरूर हुआ होगा ये कथा ना रहकर, क्योंकि ऐसा ही सचमुच में हुआ है कि बाहरी हमारी उड़ान अगर हम देखते हैं आज के कलयुगी मानव की, बाहरी तलाश बाहरी खोज इतनी ज्यादा है, इतनी कॉन्सेंट्रेशन है, और कहीं ना कहीं गोइंग विद इन एक्चुअली
वो है ही नहीं। इसीलिए कहा कि मेडिटेशन इज अ जर्नी विद इन, भीतर जाओ और भीतर में मिलेगा वो सुख शांति आनंद प्रेम, जो हमारी क्रेविंग्स है जो हमारी वॉन्टिंग्स है वो सब कुछ अंदर ही है, बाहर तो है ही नहीं। तभी तो महान आत्माएं भी यही कहते हैं भीतर जाओ, सुख बाहर नहीं है भीतर है, शांति बाहर नहीं है भीतर है, लेकिन भीतर कहाँ जाना कैसे जाना ये जर्नी किसी के पास नहीं। तो ये है प्रॉपर नरिशमेंट, कि जब आध्यात्मिक ज्ञान से हम अपने आप को नरिश करते हैं उस समय व्यक्ति का मन सशक्त होने लगता है, फुलफिल्ड होने लगता है,
सही पहचान मिलने लगती है, मन की शक्ति की बात आ जाती है। बिल्कुल,
दूसरा मन को रेस्ट भी चाहिए। अब रेस्ट कैसे मिलेगा, रात को हम सो जाते हैं शरीर सो जाता है, मसल्स रिलैक्स हो जाते, मन नहीं सोता है, वो तो स्वप्न के रूम घूमता रहता है सबकॉन्शियस लेवल पर। तो मेडिटेशन मीन्स इट्स कॉन्शियसली रिलैक्सिंग द माइंड, कि थोड़ी देर भी जब हम शांति में बैठते हैं एकदम शांत मन को करते हैं तो उसमें जो मन को आराम मिलता है वो तो कई गुना अधिक उसको रिचार्ज कर लेता है, उसकी एफिशिएंसी को जैसे मल्टीप्लाई कर लेता है। इसीलिए आज वेस्टर्न दुनिया के अंदर मेडिटेशन सीखने का क्रेज है, क्योंकि हर एक इतना थक चुका है, इतना डिप्रेशन में चला गया है कि अब वो अपने माइंड को रिलैक्स करना चाहता है, और उन्होंने देख लिया कि बाहर की कोई चीज उसके माइंड को रिलैक्स नहीं कर पा रही, इसीलिए मेडिटेशन द्वारा रिलैक्सेशन चाहता है। कैसे ये बात कहते हैं, तो मेडिकल साइंस द्वारा ये प्रूव किया गया है कि आज एक व्यक्ति जब गुस्सा करता है तो 5 मिनट का बॉइलिंग टेम्पर गुस्सा करे तो उसकी 2 घंटे की कार्य क्षमता जल जाती है, 2 घंटे तक इज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट हिज माइंड ऑन एनी अदर टास्क। वो 2 घंटा क्या करेगा, वो 10 लोगों को ढूंढेगा और अपना जस्टिफिकेशन देता रहेगा, मैंने इसके ऊपर गुस्सा किया ना, क्यों किया पता है, क्योंकि हर बार ऐसा करता है। और जब जस्टिफाई करता है और 10 लोग उसको मिल गए कहने के लिए बहुत अच्छा किया तुमने आज उसको पाठ पढ़ा दिए, तब वो माइंड मेंटली रिलैक्स हो पाता है। 10 में से 1 ने भी कह दिया ना ये तुमने अच्छा नहीं किया, फिर फ्लेयर अप,
एक फिर एक और जर्नी
फिर इतना गुस्से में आ जाता है, फिर 2 घंटा उसका बर्बाद हो जाता है, है ना? इसी तरह 5 मिनट कोई मेंटल रिलैक्स कर ले, मेडिटेशन कर ले, तो 2 घंटे की कार्यक्षमता बढ़ जाती है। ये साइंटिफिक प्रूफ है, मेडिकल साइंस द्वारा प्रूफ किया गया है। और जब ये मेंटल एफिशिएंसी उसकी बढ़ जाती है, इसलिए हम यही कहते हैं कि मेडिटेशन कितना करना चाहिए, सुबह 20 मिनट शाम को 20 मिनट सुबह 20 मिनट करेंगे तो 8 घंटे की वर्क एफिशिएंसी हमारी बहुत अच्छी रहेगी, सारा दिन बहुत अच्छी तरह से हम काम कर सकते हैं, अपनी कार्य कुशलता को बढ़ा सकते हैं। और 8 घंटा बीतने के बाद जब थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ता है तो नेचुरल एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो फिर शाम को या रात को सोने से पहले 20 मिनट ताकि एक पीसफुल स्लीप, माइंड को रिलैक्स करके फिर सो जाओ। तो इतनी अच्छी नींद आएगी कि व्यक्ति जब सुबह उठेगा ना इतना फ्रेश होकर के उठेगा। जब वो टेंशन्स को लेकर के सोता है ना तो सुबह उठने के बाद भी जैसे सारी रात उसने टेंशन में वो जो सोया तो उसका माइंड ने काम किया तो मेंटली एग्जॉस्टेड, मतलब सुबह उसकी फ्रेश नहीं होती है। इसलिए रात को सोने से पहले 20 मिनट, सुबह उठने के बाद 20 मिनट, बस इतना मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं क्या? इतना तो हम अपने लिए करें।
बिल्कुल, और दोनों में फर्क होगा, दोनों के जो हमारे थॉट प्रोसेस होंगे या उसमें होगा उसे हमें
बहुत बड़ा
उसको गवर्न करना होगा।
और तीसरा है एक्सरसाइज। मन के लिए एक्सरसाइज क्या है? मन के लिए एक्सरसाइज है पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग अपने आप नहीं चलेगा, चलाना पड़ेगा,
चेक करना पड़ेगा बार बार,
अपने आप बार बार विचार देना पड़ेगा। कोई सिचुएशन आएंगे इमीडिएट नेगेटिव थॉट आ जाएगा, लेकिन फिर भी मन को समय रोक करके पॉजिटिव सोच कर देखो। और पॉजिटिव सोचने की विधि को और सरल करने के लिए जितना हमने हेल्दी नरिशमेंट स्पिरिचुअल थॉट से उसका किया होगा तो पॉजिटिव
उसी में से कोई ना कोई थॉट आएगा, आता है, दैट डेफिनेटली
हैपेंस। जो सुबह सुना, अरे आज मैंने ये बात सुनी, लेट मी प्रैक्टिकली अप्लाई इट, तो एप्लीकेशन करने की एक प्रेरणा मिलेगी और उस एप्लीकेशन में नेचुरल है पॉजिटिव रिजल्ट्स तो मिलेंगे ही, है ना? तो इसीलिए पॉजिटिव थिंकिंग की एक्सरसाइजेस, अपने आप चलेगा नहीं, करना पड़ेगा। जैसे आज एक व्यक्ति हो, उसको हार्ट अटैक आया मान लो, और वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको एडवाइस करता, देख तेरे को जीना है तो अब तुम्हें कुछ परहेज करनी पड़ेगी
और करनी पड़ेगी,
करनी पड़ेगी, है ना? और एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, रोज सुबह आधा घंटा ब्रिस्क वॉकिंग, शाम को आधा घंटा ब्रिस्क वॉकिंग करनी होगी। अगर उसने डॉक्टर को कहा मेरे पास टाइम नहीं है, सुबह मुझे बहुत कारोबार होता है, शाम को भी देखूंगा, तो डॉक्टर क्या कहेंगे? मरो, देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव, यू विल हैव टू फाइंड टाइम फॉर योर ओन सेल्फ, है ना? तो ठीक इसी प्रकार आज कोई कहे कि भाई सुबह सत्संग करने लिए मेरे पास टाइम नहीं है, या मैं पॉजिटिव थिंकिंग नहीं कर पाता हूं, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। क्योंकि अगर मुझे माइंड को हेल्दी रखना है तो मुझे कोई ना कोई रीशेड्यूलिंग अपनी दिनचर्या में करनी ही होगी, जिससे हम अपने आप को हेल्दी रख सके। और व्यक्ति एक बार हेल्दी हो गया, मेंटली उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई, एम्पावर्ड हो जाता है, तो बातें बहुत आएंगी। ये नहीं कि मेडिटेशन करने से बातें नहीं आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, समस्याएं आएंगी, बातें आएंगी, लेकिन उसका माइंड का फोकस क्लियर होने कारण, हेल्दी थॉट्स होने कारण उसको सुलझाने की ताकत उसमें आ जाएगी। तो बातें आएंगी लेकिन एक सेकंड में उसको अपसेट नहीं होगा, वो मूड स्विंग्स नहीं होगा, टेंशन में नहीं आएगा, डिप्रेशन में नहीं आएगा, लेकिन उसको सॉल्व करने का तरीका आ जाता है। पॉजिटिव थिंकिंग में उसको वो बातें मिल जाती है, स्पिरिचुअल थॉट्स में उसको वो हेल्दी बातें मिल जाती है जो उसको अप्लाई करना शुरू करता है। तो इसीलिए वो मन जितना स्वस्थ होगा तो उसकी कार्य क्षमता भी बढ़ जाएगी, उसकी मानसिक क्षमता भी बढ़ जाएगी।
उषा बहन, आज जो जितनी भी हमने बातचीत की है उसमें बिल्कुल ये बहुत क्लैरिटी से है कि मन और शरीर दोनों को ही स्वस्थ रखा जा सकता है। लेकिन एक छोटी सी बात की, हमें थोड़ा सा वक्त है अभी, कि वांटिंग का जो एस्पेक्ट है, जो मन का जो एक इच्छा ये कि मुझे चाहिए, वांट, और वो नहीं प्राप्त कर पा रहा उस चीज को, वो अभी भी उसको बहुत डिप्रेस करता है, परेशान करता है। उससे बाहर निकलने का उसका क्या?
उसका बाहर निकलने का यही है कि भाई शायद कहीं मैं रास्ता गलत तो नहीं अपना रही हूँ उस वांटिंग को पूरा करने के लिए, और उस वांटिंग को पूरा करने के लिए रास्ता गलत है मेरा, तो उसको वापस हम अपने आप को चेक करें, सेल्फ एनालिसिस करें, और कैसे उसको पूरा कर किया जाए। मुझे याद आता है, एक घटना याद आती है कि अमेरिका में एक बार एक खूनी पकड़ा गया, तो पुलिस ने उनका एक साइकोलॉजिकल इंटरव्यू लिया, उसको पूछा कि तुमने खून क्यों किया, तो उसने कहा मुझे पैसा चाहिए था। उसको पूछा तुम्हें पैसा क्यों चाहिए था, तो कहा ताकि मैं अच्छे लोगों के साथ घूम सकूं, अच्छे लोगों की पार्टीज में जा सकूं, इसीलिए। तो उसको पूछा तू अच्छे लोगों के बीच में जाना क्यों चाहता था, तो कहा कि क्योंकि मुझे खुशी चाहिए थी। I wanted to be happy.
And I thought this is the way to be happy.
Yeah. So I wanted to be happy, so I went. I wanted some money for that. और मनी चाहिए तो मुझे नेचुरल खून करना ही पड़े. तो हैप्पीनेस को प्राप्त करने के लिए तुमने खून किया, क्या खून करने से हैप्पीनेस मिलेगी कभी? इज इट द राइट टेक्निक? नो. ऐसे हर इंसान को जो खुशी चाहिए, जो वांट्स है उसकी, खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, ये जो चीजें चाहिए, तो कहीं हम कोई गलत तरीका, कोई स्वार्थ युक्त तरीका तो नहीं अपना रहे हैं?
क्योंकि अगर डिपेंडेंसी भी कर रहे हैं उसके ऊपर,
अगर डिपेंडेंसी है, अगर वो चीज खुल में हम ढूंढ रहे हैं उससे प्राप्त कर, तो वो मुझे कितना प्राप्त कराएगी? क्योंकि वो सही तरीका नहीं है. तो सही तरीका अब हमें मिलता है कि वो चीज को प्राप्त करने के लिए खुशी दो तो खुशी मिलेगी. आपको रिस्पेक्ट चाहिए, रिस्पेक्ट दो तो रिस्पेक्ट मिलेगा. हम किसी को सहयोग दे तो सहयोग मिलेगा. यानी संसार में जैसे कहा गया है, जो देंगे वही मिलेगा. अगर मुझे जो चाहिए, मुझे पहले वो दूसरों को देना होगा. बिना दिए मुझे मिलेगा नहीं. और बाकी मैं इन ह्यूमन टेक्निक्स को अपनाऊं, उससे कभी मैं जीवन में जो माइंड की वांट्स है उसको प्राप्त नहीं कर सकता, उसको फुलफिल नहीं कर सकता.
डेफिनेटली. और अगेन यू नो, वांटिंग मेक्स मी डिपेंड ऑन somebody
else. समथिंग, somebody.
यू नो, लाइक अगर अदरवाइज व्हेन आई हैव अंडरस्टूड, जब मैं समझ गया हूँ कि सब कुछ विद इन है, सो व्हाई डोंट आई गो विद इन, व्हाई डोंट आई वांट फ्रॉम माई सेल्फ. यू नो, कहीं ना कहीं मन जो है वो टूटता इसीलिए है कि वांटिंग बाहर है. वांटिंग अगर अपने आप से ही मांग लूं अगर मैं, तो अपने आप ही मिल जाएगा फिर. क्योंकि आप मेरे अंदर है अगर, तो बहुत सुंदर. आज आपने मन के उस एस्पेक्ट को लिया जो कहीं ना कहीं हमें परेशान करता है, अस्वस्थ रहता है, तो उसको स्वस्थ रखने के, उसे खुश रखने के भी तरीके हैं, इम्प्लीमेंट करने की बात होती है. आज आप हमारे साथ थे, बहुत अच्छा लगा. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. कोई ऐसी बात, कोई ऐसा